राविया लड़खड़ाते कदमों से कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है। वो गिरने के डर से दरवाजे को कसकर पकड़ लेती है। सोफे पर अनंत लेटा हुआ था, उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे और इमामी उसके पास बैठी अपनी ड्रेस को ठीक कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोफे पर अनंत के साथ ही सोई हुई थी। ये देखकर राविया का कलेजा फटने को तैयार हो गया था। राविया का पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें अनंत और इमामी पर टिकी थीं, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हूँ। दरवाजे को कसकर पकड़े हुए वो लड़खड़ाती हुई अंदर आई। उसका गला रुंध रहा था, लेकिन गुस्सा और दर्द इतना ज्यादा था कि आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। अनंत अभी भी सोफे पर लेटा था, आंखें बंद। इमामी ने राविया को देखते ही झटके से उठकर अपनी ड्रेस ठीक की और मुस्कुराते हुए बोली, रवि तुम यहाँ इतनी रात को? राविया ने इमामी की तरफ एक ऐसी नज़र डाली जैसे वो उसे मार डालना चाहती हो। उसकी आवाज़ कांपती हुई निकली, तुम ये क्या कर रही हो? इमामी ने मासूमियत से आंखें बड़ी करके कहा, अरे रवि तुम गलत समझ रही हो, मैं गिर गई थी, पैर में चोट लगी थी, जीजू डॉक्टर लेकर आए थे। डॉक्टर चला गया लेकिन जीजू को लगा कि मैं अकेली हूँ तो वो थोड़ी देर रुक गए, हम बस बात कर रहे थे और फिर नींद आ गई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। राविया का खून खौल उठा, वो तेज़ कदमों से अनंत के पास गई और उसने अनंत का कंधा पकड़कर हिलाया। अनंत की आंखें खुली, वो चौंक कर उठ बैठा, राविया तुम यहाँ कैसे? राविया की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज़ चिल्लाहट में बदल गई, मैं यहाँ कैसे? तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इमामी के साथ रात भर सोफे पर? इमामी ने बीच में आने की कोशिश की, राविया प्लीज ऐसा कुछ नहीं, मैं। राविया ने इमामी की तरफ घूर कर कहा, सेट अप, तुम्हें तो मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने जानबूझकर ये सब प्लान किया है, तुम उसे फंसाना चाहती हो, तुमने मुझे मैसेज किया था जानबूझकर ताकि मैं यहाँ आ जाऊँ और ये सब देखूँ। अनंत अब पूरी तरह उठ खड़ा हुआ, उसने राविया के कंधे पकड़े, बीवी शांत हो जाओ, मैं सच बता रहा हूँ, इमामी को चोट लगी थी, मैंने डॉक्टर भेजा था, वो चला गया लेकिन मैंने सोचा वो अकेली है तो थोड़ी देर रुक गया, हम बस बात कर रहे थे और फिर मुझे नींद आ गई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। राविया ने उसके हाथ झटक दिए, बात कर रहे थे रात भर सोफे पर और मैं घर पर इंतजार कर रही थी, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा काम है और काम था इमामी के साथ। अनंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, काम था लेकिन इमामी का मैसेज आया, मैंने सोचा हेल्प कर दूं, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम पहले ही इमामी से नाराज थी, मैं नहीं चाहता था तुम्हें और टेंशन दूं। राविया ने रोते हुए कहा, तुम्हें मेरी टेंशन थी या इमामी की? तुमने उसे चुना, मुझे नहीं। अनंत ने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की लेकिन राविया पीछे हट गई, डोंट टच, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इमामी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, राविया मैंने कुछ नहीं किया, जीजू सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे। इस बार राविया ने ध्यान से इमामी की तरफ देखा, उसके पूरे शरीर पर बने निशानों को देखकर राविया एकदम से लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर पड़ी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि कभी उसका पति उसके साथ ये सब कुछ भी कर सकता है। तो वहीं अनंत को भी पता चल चुका था कि राविया उसे बहुत गलत समझ रही है, इसलिए वो जल्दी से राविया के पास घुटनों के बल बैठा और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, रात को उसे अकेले डर लग रहा था इसलिए उसने मुझे कॉल करके बुला लिया था और उसी ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो और अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम और भी नाराज हो जाओगी। और कुछ भी नहीं हुआ है क्या? तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और के करीब भला क्यों जाऊँगा? अनंत चाहे अब कितनी भी सफाई दे दे पर राविया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होने वाला था। वो फटी आंखों से बस इमामी की तरफ देख रही थी। तो वहीं इमामी को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अनंत ने अब तक डॉक्टर वाली बात राविया को नहीं बताई है, जिसका साफ मतलब है वो इस बात को प्राइवेट रखना चाहता है क्योंकि उसे सच में इमामी की फिक्र है, उसकी इज्जत की फिक्र है, वो उसकी बातें किसी और को नहीं बताने वाला है जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया है। ये सोच समझ कर ही इमामी का दिल खुशी से झूम रहा था क्योंकि अगर राविया को डॉक्टर वाली बात पता नहीं चलेगी तो कभी भी उसका शक अनंत से दूर नहीं होगा और वो खुद ही अनंत को छोड़कर चली जाएगी क्योंकि राविया को चीटर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राविया का दिल इसी सोच से जोरों से धड़कने लगा था कि उसके पास जो इकलौता इंसान था जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करती थी, आखिर में उसने भी उसे धोखा दे दिया था, यानी कि वो सच में अनलकी है, उसे कभी भी प्यार नहीं मिल सकता है। ये सोचते सोचते अचानक ही राविया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो अनंत की बाहों में बेहोश होकर गिर गई। ये देखते ही अनंत ने चिल्लाते हुए कहा, बीवी प्लीज आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, आई एम सॉरी, आगे से मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये बोलते बोलते अनंत की आवाज़ भारी हो गई थी। अगले ही पल उसने राविया को अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से दौड़ता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि उसने पैरों में स्लिपर्स नहीं पहन रखी हैं, उसके शर्ट के बटन खुले हुए हैं। वो बेसुध सा दौड़ते हुए लिफ्ट में पहुंचा और उसके बाद कॉरिडोर में दौड़ता हुआ होटल से बाहर जाने लगा। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर अनंत को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाकी सब हैरान रह गए थे, आखिर थोड़ी देर पहले सही सलामत गई लड़की को हुआ क्या। तो वहीं अनंत की गाड़ी अब सीधा एक अस्पताल के सामने जाकर रुकी थी। वो वहां भी पागलों की तरह दौड़ते हुए डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद ही राव्या का इलाज शुरू हो गया। अनंत बेचैनी से वहीं अस्पताल के बाहर बैठा था। इमामी भी पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। उसने अनारकली सूट पहना था और वो सिर पर दुपट्टा लेते हुए अब अपने प्लान के सक्सेसफुल होने की खुशी मना रही थी। उसने मंजू को कॉल करके थैंक यू कहा था और उसके बाद वो भी अस्पताल के लिए निकल गई, क्योंकि उसे फिर से अनंत से प्यारी प्यारी बातें जो करनी थी। वहीं कॉलेज में बाकी के पूरे लेक्चर में पार्थ का चेहरा वैसे ही गुस्से से लाल था, जिससे रूही का डर बढ़ता ही जा रहा था। वो बार बार डरते हुए पार्थ की तरफ देख रही थी। आखिरी पीरियड में पार्थ रूही के पास से उठकर प्रिंसिपल के केबिन में चला गया। रूही बस उसे कंफ्यूजन में देखती रही, क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत तो उसके अंदर थी नहीं। केबिन में जाने के बाद पार्थ प्रिंसिपल के सामने किसी राजा की तरह बैठ गया। प्रिंसिपल बेचारा पार्थ की वजह से डरा हुआ था, क्योंकि उसे कहीं से पता चल गया था कि पार्थ एक माफिया बॉस है और वो एक पल नहीं लगता किसी की भी जान लेने में। उसने इस कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटी, क्योंकि वो फाइनल ईयर में थी, उसे भी बता दिया था कि वो पार्थ और रूही से बचकर रहे, क्योंकि आज वो कॉलेज नहीं आई थी। उसकी अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, इसलिए वो अपनी सारी बातें सबसे पहले अपनी बेटी से ही शेयर करता था। पार्थ घूरते हुए प्रिंसिपल को देख रहा था, फिर उसने अपना फोन निकाला, जिसमें उन तीनों लड़कों की फोटो थी जो थोड़ी देर पहले रूही को परेशान कर रहे थे। प्रिंसिपल उन फोटो को देखकर कंफ्यूज हो गया, तो पार्थ ने उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कहाँ रहते हैं, और दूसरा, इन्हें अभी के अभी कॉलेज से बाहर किया जाए। कल के दिन मुझे ये क्लासरूम में दिखने नहीं चाहिए, वरना आप भी इस प्रिंसिपल की चेयर पर नहीं दिखेंगे। प्रिंसिपल ने डरकर अपने गले को तर किया और फिर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, डोंट वरी सर, आपका काम हो जाएगा।
ये सुनते ही पार्थ ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फिर उठकर वापस क्लासरूम में आकर रूही के पास बैठ गया।